Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा.
जी शुक्रिया. थैंक यू.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स स्लिप्स ओवर 350 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 26,200. All major Asian indices end in positive territory, with South Korea's Kospi closing at record highs. And global crude oil prices rise around 0.5%.
घरेलू शेयर बाजार में हुई गिरावट, सेंसेक्स 350 अंक से अधिक फिसला, निफ्टी 26,200 के स्तर से नीचे आया. एशिया के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में आज हुई खरीदारी अच्छी खासी. दक्षिण कोरिया का कोस्पी नए स्तर पर पहुंचकर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत लगभग 0.5% बढ़ी.
As a disclaimer, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं घरेलू शेयर बाजार से, जहां आज गिरावट हुई. प्रमुख सूचकांक नुकसान के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 376 अंक यानी 0.44% नुकसान के साथ 85,063 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 72 अंक यानी 0.27% कम होकर 26,179 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी बिकवाली तेज रही. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.2% से अधिक की गिरावट हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% नीचे आ गया.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस द सेंसेक्स एंड द निफ्टी एंडेड इन द रेड, वेट डाउन बाय लॉसेस इन इंडेक्स हैवी वेट्स. बोथ इंडेक्सेस ओपन्ड लोअर एंड कंटिन्यूड टू डिक्लाइन स्टेडिली थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन. However, the Nifty briefly turned positive for a few minutes before slipping back into negative territory. The Sensex fell 376 points, or 0.44%, to close at 85,063, while the Nifty slid 72 points, or 0.27%, to settle at 26,179. Meanwhile, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange edged lower. The mid-cap index dipped over 0.2%, while the small-cap index declined 0.4%.
Sensex pack पर ध्यान दें तो आज 30 में से 17 कंपनियां लाभ के साथ बंद हुई. लाभ कमाने वालों में सबसे ऊपर ICICI बैंक के शेयर रहे, जिनमें 2.9% की वृद्धि हमने देखी. हिंदुस्तान यूनिलीवर और सनफर्मा दोनों को 1.7% से अधिक का मुनाफा हुआ. भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 1.3% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए. नुकसान उठाने वालों में सबसे प्रमुख कंपनी रही ट्रेंट, जिसके शेयर 8.6% से अधिक लुढ़क गए. रिलायंस को 4.4% से अधिक का नुकसान हुआ. आईटीसी के शेयरों में लगभग 2.1% की गिरावट हुई.
Among the sectoral indices of the BSE, 11 out of 22 sectors edged higher. In the gainers, healthcare climbed almost 1.4%, PSU Bank gained over 0.5%, and consumer durables rose more than 0.4%. Among the top laggards, energy dropped 1.7%, oil and gas shed over 1.2%, and services lost nearly 1.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,521 declined, 1,659 companies advanced and 169 remained unchanged.
नजर डालें रुपए की स्थिति पर. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 11 पैसे मजबूत हुआ, 90 रुपए 17 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.44 पर चल रहा था. एसपी जी, यदि हम आज के कारोबार पर ध्यान दें तो कुछ प्रमुख कंपनियां घाटे में रही हैं, लेकिन सेंसेक्स पैक की 30 में से 17 कंपनियां मुनाफे में रहीं. बाजार का ये मूड यदि हम थोड़ा और बढ़ाएं तो 22 सेक्टर में से 11 बढ़त के साथ बंद हुए हैं, यानी मिला जुला रुख रहा है चारों तरफ. क्या किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को?
देखिए मनोज जी, जो हमने पीछे एक रैली देखी, हमने देखा कि मार्केट्स बहुत अच्छे स्तर बना रही हैं और ऑल टाइम हाई के पास ओवर कर रही थी काफी दिनों के लिए. और काफ़ी चीज़ें जो ग्लोबल लेवल पे जो हम देख रहे थे कि जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स थी या ट्रंप टैरिफ्स थे, तो उनमें कुछ हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी कि जियो पॉलिटिक्स है वो भी शांत हो रही है, रशिया और यूक्रेन में या फिर यूएस में बातचीत चल रही थी. लेकिन अब कुछ दिनों से वापस जो एक टसल हुई है, जो वापस एक टेंशन का माहौल बना है, जो कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रही है जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में, और दूसरा जो ट्रंप साहब ने वापस एक और ऐसी धमकी दी है कि हम अगर इंडिया रशिया से और तेल खरीदना बंद नहीं करता तो मैं और टैरिफ लगा सकता हूं, तो ऐसी जो संभावनाएं हैं, ऐसी जो अनाउंसमेंट्स हैं, उनसे मार्केट थोड़ी कॉशियस अप्रोच में आई हुई है. जिसे कि एक मूवमेंट तो है लेकिन वो सेक्टर स्पेसिफिक है. मार्केट्स स्ट्रांग हैं, मार्केट्स की रेजिलियंस बहुत हाई है, लेकिन फिर भी मार्केट्स एक ऊपर का रुख नहीं बना रही हैं क्योंकि आगे एक हमें अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है. और ऐसा कुछ नेगेटिव भी नहीं है कि मार्केट्स अपना डिसलीरेट करें. हाँ, एक सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट है, एक चर्निंग है, कुछ लोग अपना मुनाफा वसूली करके दूसरे सेक्टर्स में एंटर कर रहे हैं, कुछ अपने एक शेयर से निकल के दूसरे में जा रहे हैं, तो एक चर्निंग का जो सिलसिला है वो बना हुआ है. अदरवाइज मार्केट्स का जो सेंस है, जो मार्केट्स की अप्रोच है, दैट इज वेरी स्ट्रांग एक्चुअली, सपोर्टेड बाय मेनी थिंग्स.
सो डॉक्टर शर्मा, टुडे वी सॉ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर पर्टिकुलरली इन एनर्जी एंड मीडिया स्टॉक्स, इवन एज आईटी, फार्मा एंड पीएसयू बैंक्स आर होल्डिंग अप द इंडिसेस. डस दिस सेक्टरल डाइवर्जेंस सजेस्ट एन अर्ली सेक्टर रोटेशन और इज दिस जस्ट अ शॉर्ट टर्म पोजिशनिंग मूव?
I would say this is short-term positioning mood because now the people are not booking their profit from the market. They are booking their profits from the sectors and entering in the other promising sectors, churning their portfolios from one to another. So this is the movement within the market, not a deceleration because of some negative factor. Yes, markets are cautious because of the global factors. Like I mentioned that geopolitics is on the rise, yeah, and Trump tariffs are again troublesome and creating tussles or the tensions. And the inflation trajectory, particularly in US, is very sticky. So the movement by Fed is also uncertain in the coming times. So there is no positivity or positive development from the global level. But our economy, we are doing good, and our IIP numbers are making great breakthrough in the month of recent months, and exports are doing good. Exports are increasing at 5-6% despite many headwinds. In our inflation numbers are within the benign conditions, less than 1%. So all the factors are very, very positive, but the global cues are not that much supportive at this juncture.
So let's look at it from the investor's point of view. Broader markets are under pressure with mid-cap and small-cap indices trading lower. Yet, more than 100 stocks are hitting 52-week high. And a number of them are on a 52-week low. How should I, as an investor, interpret this kind of internal churn that is taking place in the market?
Yes, because global markets are very dynamic. Actually, many developments are taking place each day. So that's why some sectors are becoming more and more promising and some sectors are losing their faith in the international market. Like announcements of the Trump that they can impose further tariffs. Now the labor intensive or the IT stocks are again in tension. So these such kind of developments are making the opportunity for shifting from one sector to another or one stock to another with the booking of profit in the 52 high shares or entering some other prospective shares. This is happening in the market.
So given that the India's benchmark index is still near record territory even after today's dip, do you see this as a healthy consolidation or an early sign of a larger correction building up?
I don't see any larger correction because we are fundamentally strong. This is the only temporary churning in the sectors and the stocks.
यहाँ पर हम आपका ध्यान आज नुकसान उठाने वाली कंपनियों पर विशेष रूप से ले चलना चाहेंगे हालांकि हम किसी खास कंपनी का नाम नहीं लेते लेकिन सेंसेक्स पैक की ट्रेंड है उसमें 8.6% से अधिक की गिरावट हुई है रिलायंस को भी 4.4% से अधिक का नुकसान हुआ आईटीसी की शेयर 2.1% के आसपास घाटे में रहे तो ये ट्रेंड क्या जता रहा
देखिए मनोज जी जो अभी हमने देखा पिछले 2-3 दिन में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं जियोपॉलिटिक्स हुए हैं वो उसके सीधे तौर पे जो सेक्टर्स इम्पैक्टेड बनते हैं वो एक ऑयल सेक्टर है आईटी सेक्टर है ये सेक्टर्स के ऊपर प्रभाव होएगा ही होएगा दैट्स व्हाई ये जो सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स हैं या शेयर स्पेसिफिक मूव्स हैं उसी वजह से हो रहे हैं इनके ऊपर जो भी जैसी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वैसे ही स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव शेप ले रहे
सो द एनर्जी स्टॉक्स आई विल नॉट टेक द नेम्स हैव कम अंडर नोटेबल प्रेशर today, dragging the indices lower. What is spooking the market on the energy side? Global crude dynamics, which you also spoke about, or is it the policy overhang, or is it about the valuations?
I think this is about the valuations because now the global growth, if the demand trajectory is studied, then global growth is not that much high. So that will not provide any opportunity to crude prices to go up because the demand in many countries is decelerating and particularly the advanced economies are facing the deceleration. China is again facing that though China is growing at around 5% or somewhere between 5 to 6. That is not enough for China's economy, the second largest economy. So crude demand will not happen that much high though factors are very, very positive for the crude prices to go up. But at this juncture, I would say the rally will remain lackluster for the energy prices and volatility may be there because of some geopolitical developments.
तो श्रोताओं को क्या सलाह ऐसे माहौल में देंगे आप हमारे जो छोटे निवेशक हैं हमारे नियमित श्रोता हैं उन्हें क्या सुझाव देना चाहिए
देखिए अगर ऐसे मौकों पे जब ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं जैसे कुछ हलचल होती है जैसे अभी हमने वेंजुएला के केस में देखा या फिर हम और बहुत सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं तो ऐसे केस में थोड़ा पीस रखने की जरूरत होती है थोड़ा शांत रहें मार्केट में कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देखें कि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हो रही है मार्केट्स बहुत डिसलिरेट हो रही है अब एंटर कर जाएं या फिर मार्केट बहुत हाई जा रही है अब किसी स्टॉक को खरीद लें तो ऐसे समय से मार्केट से दूर रहना काफी उचित होता है खास करके रिटेलर के लिए हाँ जो स्पेकुलेटिव मूव लेते हैं उनके लिए ठीक है उनको तो अपने दाव पेच वो जानते हैं कि कैसे मार्केट से मुनाफा लेना है बट रिटेलर के लिए जिसके पास एक लिमिटेड मनी होती है जो उसकी हार्ड अर्न मनी होती है जो लंबे निवेश के लिए लेके चलते हैं तो उसको ऐसे समय में मार्केट से दूरी रहना चाहिए
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं चले एशियाई बाजार की ओर एशिया के प्रमुख शेयर बाजार आज लाभ के साथ बंद हुए दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% से अधिक बढ़त में रहा कोस्पी सूचकांक का 4,525 के नए उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है यह बंद होने का सबसे बड़ा स्तर अभी तक का
कोस्पी का है। चीन चलें तो वहां संघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.5% की वृद्धि हुई है। हांगकांग का हेंगसेंग लगभग 1.4% लाभ में रहा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.3% से अधिक मुनाफे में रहा। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स में भी लगभग 1.3% की वृद्धि हुई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख था। अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 लगभग 0.7% और जर्मनी का डेक्स 0.4% से अधिक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि बिकवाली के दबाव में फ्रांस का कैक 40 0.4% नीचे चल रहा था।
Wall Street ended on higher side yesterday, buoyed by a rally in energy stocks after the U.S. military captured Venezuela President Nicolas Maduro. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average jumped more than 1.2% to reach a record high in intraday trading, driven by strong gains in financial shares. Meanwhile, the Nasdaq Composite Index climbed 0.7% and the S&P 500 added over 0.6%.
यहाँ पर हम पहले एशियाई बाजार की ओर चलना चाहेंगे और चीन की प्रगति की हमने चर्चा की। वहां के शेयर बाजार जो दर्शा रहे हैं वो हमारे पास आंकड़े आए। कुल मिलाकर एशिया में यदि हम एशियाई वृद्धि को आंकना चाहें, देखना चाहें, तो दुनिया की जो बदलते हुए डायनामिक्स हैं उसमें एशियाई बाजार, विशेष रूप से चीन और खासतौर से जो कोस्पी है उसमें हम रिकॉर्ड ऊंचाई देख रहे हैं, क्या कहानी कह रहे हैं ये?
देखिए, कोस्पी का तो सीधे तौर पर जो संबंध है वो आपका जो चिप्स एंड सेमीकंडक्टर में ग्रोथ आना और एक्सपोर्ट इंक्रीज होना और उसको आगे अपॉर्चुनिटी मिलना
जी,
क्योंकि आने वाले टाइम में इनका, मैं ये कहूंगा कि अभी काफी होल्ड रहेगा इन सब चीजों के ऊपर, जब तक दूसरे कंट्रीज के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है उनको डेवलप करने की। तो साउथ कोरिया का जो मार्केट है, जो कोस्पी है, वो बहुत अच्छे से आगे उसके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसी के बेस पे अभी वो न्यू हाइज भी बना रहा है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डिमांड है वो वर्ल्ड में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, खास करके जब एआई के चलन की वजह से। नाउ द इकोनॉमीज आर बिकमिंग एआई ड्रिवन, तो एआई के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो सेमीकंडक्टर का एक प्रचलन होना, उसके ऊपर कमांड बनना, उसका प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसकी तो इस तरीके की स्टोरी है। चाइना के ऊपर, चाइना जैसे काफी समय से बहुत हेडविंड्स फेस कर रहा है, जो रियल स्टेट क्राइसिस है अभी भी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, बट जो एक साइक्लिकल ग्रोथ होता है, जो उसकी वजह से चाइना में हल्का सा एक अपटिक देखने को मिला है कि जो एंटीसिपेशन है दैट इज एट अराउंड, पहले तो चाइना बहुत डेसिलेरेट हो गया था, 4% के आसपास ग्रोथ
जी जी जी,
तो अभी लगभग हल्का सा एक हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट है, लगभग कोई 5% के आसपास जो है चाइना ग्रो कर पाएगा। बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ग्रोथ चाइना के लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे चाइना की एस्पिरेशंस हैं, जैसे चाइना आगे वर्ल्ड में एक उसने अपने आप को सेटअप किया, एक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बना, और अभी अगर ग्रोथ डिसेलरेट होके वो भी पिछले 10 साल में जो डबल डिजिट से आके आपका जो 5% के आसपास आ जाता है, तो बहुत बड़ी बात है चाइना के एक लॉन्ग टर्म ट्राजेक्टरी के लिए। तो चाइना को काफी प्रयास करना होगा आगे इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, और प्रयास के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है अभी, क्योंकि यूएस का जो इंटरवेंशन है वो काफी स्ट्रांग हो गया है पिछले कुछ वर्षों।
You mentioned US and from Asia, let's discuss the US. How do you read the development in the Americas? Look at the figures. We talked about a rally. All the Wall Street ended higher yesterday. In fact, the energy shares went up. What would be, according to you, the repercussions of it on the world, particularly on India, on the energy sector, and also particularly the oil going forward?
देखिए, इससे जो पॉलिटिक्स है और इंक्रीज हो जाएगा, दिस विल स्टोक द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक्चुअली, दैट ऑलरेडी स्टार्टेड, दैट ट्रंप इज नाउ सेइंग दैट यू डू नॉट बाय दिस थिंग फ्रॉम क्रूड फ्रॉम रशिया, एंड आई एम गोइंग टू इम्पोज सम मोर टैरिफ्स ऑन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट। So this is not favorable for the Indian economy, that if the Trump is imposing more tariffs, then that will create more trouble for the Indian exports. Though we are growing and we are becoming resilient, but still we have to be बिहेव इन अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरमेंट. बट इन यूएस पर्टिकुलर विद इन द यूएस इकोनॉमी आई थिंक थिंग्स आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन. इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी एंड देयर आर अनसर्टेनिटीज अबाउट द फेड रेट एंड दो द ग्रोथ इज ग्रोइंग इन द रिसेंट months that is not sustainable, that is fragile. Yeah. In the coming times, US will face again slowdown. So overall, the game is not in favor of US in the coming in the medium to long term. But now with the such kind of developments, US is dominating many economies, many countries, and playing its cards.
Moving on, Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has announced that the Global AI Impact Summit will be held in India next month. Addressing the Rajasthan Regional AI Impact Summit 2026 virtually, Mr. Vaishnaw said the AI Impact Summit, which was previously held in the UK, South Korea and France, is now being held in India this time. He added that as part of the preparations of Global AI Summit, regional AI summits were held in Meghalaya and Odisha, and today in Jaipur in Rajasthan. Mr. Vaishnaw highlighted that India is witnessing an investment of approximately $70 billion in AI, which is a very significant investment.
भारत की आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी. ऐसे में इस आईटी इंडस्ट्री को इस नए युग के लिए तैयार करना और हमारे छात्रों को इस इंडस्ट्री के लिए तैयार करना ये एक मिशन का बहुत बड़ा रोल है. और इसी के तहत 10 लाख नौजवानों को एआई स्किल्स में ट्रेन करने का कार्यक्रम आज आरंभ हुआ है राजस्थान की पावन धरती. आगामी एक वर्ष के अंदर अंदर इस गोल को पूरा किया जाएगा. साथ ही साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का संकल्प लिया है, उसी के माध्यम से एआई मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण 38,000 एआई के जीपीयूज आज सभी को उपलब्ध कराए गए, जो कि बहुत कम कीमत में सभी को एआई की फैसिलिटी आज मिल पा रही.
सो डॉक्टर शर्मा, व्हाट हाउ डू यू सी द मूवमेंट ऑफ द एआई स्टॉक्स इन द कमिंग मंथ्स?
Yes, we already discussed that AI is now driving the growth trajectory of many economies, and that's why the semiconductor demand and all these developments are happening in many Asian countries. So going forward, I believe the AI stocks or the AI-related developments or the AI-related equipments will be on the rise in the coming, because this is the start of the story for the artificial intelligence in many countries.
यानी अपने यहाँ कह लें कि अमेरिका और जो विकसित देश हैं AI के फील्ड में, सेक्टर सेमीकंडक्टर के फील्ड में, हमारे यहाँ अब कहानी बननी यानी पार्टी होनी शुरू हो रही
हो गई है. बिल्कुल. अभी जो काफी साल पहले कुछ कंट्रीज कर चुके, हम उसके बारे में अभी बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं. जी, एक बहुत बड़ी चीज.
The year 2025 stands as a defining chapter in India's development journey. It saw policies translate into progress and intent into impact. Today, in this special series, Year of Reforms, we bring you India's progress in the technology sector in 2025.
In 2025, India marked a defining inflection point in its scientific and technological journey. The country demonstrated a shift from technology adoption to technology creation, supported by large-scale investment and institutional reforms. The year saw major advances in artificial intelligence. Under India AI mission, the government committed over 10,000 crore rupees to build ethical, human-centric AI systems. Recently, the country climbed to third place in Stanford University's 2025 Global AI Vibrancy Rankings. The year also marked decisive progress in semiconductors and advanced manufacturing. Last year, India launched two facilities in Noida and Bengaluru dedicated to 3-nanometer chip design, placing the country within the global high-end chip ecosystem. Similarly, in September last year, the country's first indigenously developed Vikram 32-bit chip was presented to Prime Minister Narendra Modi at the Semicon India 2025 conference. The year also recorded significant milestones in space and strategic technology. The successful launch of NISAR, the world's most advanced Earth observation radar satellite, marked a historic India-US collaboration. With Rohan, Pallavi Parmar, Akashwani News, Delhi.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन से मुलाकात की। इस दौरान भारत और लग्जमबर्ग के बीच वित्तीय सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। विदेश मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के समर्थन का धन्यवाद दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को कर्मचारी भविष्य निधि योजना ईपीएफएस के तहत वेतन सीमा में संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पिछले 11 वर्षों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
Global crude oil prices rose today as the market weighed expectations of ample global supply this year against uncertainty around Venezuela crude output following the US capture of President Nicolas Maduro. Brent crude was trading 0.5% up at $62.07 per barrel, and WTI crude was trading over 0.4% higher at $58.59 per barrel when reports last came in. Very briefly, Dr. Sharma, how do you see now, given the geopolitical scenario in the world, the movement of the global crude oil?
I think prices will remain lackluster, not much move in the coming times. This is only the speculative ups and downs, but prices will remain almost at these levels.
Okay. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading 2.5% up at 1,38,940 rupees per 10 grams. Silver was trading over 1.5% up at 2,50,120 rupees per kilogram.
आइए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। वहां फरवरी अनुबंध वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% बढ़त के साथ 1,38,529 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी के मूल्य 1.6% बढ़त के साथ 2,50,150 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रहे थे। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा के सोना और चांदी दोनों में निवेश के अवसर फिलहाल अभी कैसे हैं और किस रूप में निवेश करना चाहिए श्रोताओं को, क्योंकि चांदी और सोना दोनों ने पिछले कई वर्षों में और विशेष रूप से चांदी ने एक वर्ष में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो निवेश किस रूप में करना चाहिए, किन चीजों में करना चाहिए?
मनोज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है इस समय, क्योंकि बहुत ही दोनों ही चीजें बहुत ही सेंसिटिव उसमें है। बहुत अच्छा प्रॉफिट आया हुआ है तो अभी कई इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि हम एंटर कर जाएं, तो वो भी एक ऐसा मूव नहीं करना चाहिए, वो खतरे वाला मूव होगा क्योंकि करेक्शन भी कभी भी आ सकती है। बहुत ही वॉलेटाइल भी है, जिनमें करेक्शन भी ऐसी आती है कि 5-10 हज़ार से ज़्यादा की करेक्शन आती है। तो मैं ये यहाँ पे सलाह दूंगा, भले बहुत ही अभी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग रैली चलेगी आगे, दोनों में एक वर्ष नहीं काफ़ी वर्ष तक रैली चल सकती है, लेकिन अगर एंटर करने के लिए नए निवेशक आते हैं तो उनको ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब सिप में जाएं। अभी तो इनके ETF अवेलेबल है, वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको फिजिकल लेके खरीद बेच करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप ETF में, सिल्वर के भी ETF आ गए हैं, तो आप उसमें ग्रेजुअली SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके। जैसे ही जो ये फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें, ना कि अपना पूरा एक निवेश एक ही बार में डाल दें तो जिससे उनको नुकसान हो सकता है। तो ग्रेजुअली करेंगे तो उनको कभी नुकसान नहीं होगा, आने वाले
टाइम में प्रॉफिट। कॉपर का क्या होगा, वेरी ब्रीफली?
कॉपर देखो, जब ये गोल्ड इज किंग इन ऑल दीज थिंग्स, व्हेन गोल्ड मूव्स अप देन ऑल दीज थिंग्स आल्सो फॉलो। कॉपर अगर आप पीछे का ट्रेंड भी देखेंगे, जब भी गोल्ड में बढ़त आई है तो सिल्वर और कॉपर ने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया।
जी जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत डॉक्टर शर्मा धन्यवाद देना चाहेंगे।
जी शुक्रिया,
थैंक यू शर्मा फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स स्लिप्स ओवर 350 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 26,200। All major Asian indices end in positive territory with South Korea's Kospi closing at record highs. And global crude oil prices rise around 0.5%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.